ये आकाशवाणी दिल्ली है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पोषण अभियान के अंतर्गत राजधानी के कृष्णा नगर में पोषण किट वितरित किए। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण करेगी। पार्क में हर वर्ष 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन ने कहा, नमो भारत रेल का परिचालन शताब्दी नगर और बेगमपुल सहित मेरठ के कई भीतरी क्षेत्रों में भी शुरू होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने विश्व प्रत्यायन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड पोर्टल के नए संस्करण का शुभारंभ किया। और दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंड मास्टर नारायण एस एल ने चौथे दौर में वियतनाम के ग्रैंड मास्टर गुएन डुक हुआ पर जीत हासिल की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पोषण अभियान के अंतर्गत आज राजधानी के कृष्णानगर स्थित एक विद्यालय में लाभार्थियों को लगभग 500 पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पोषण अभियान भारत की कुपोषण चुनौतियों का समाधान करने, स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार का प्रयास है। एक रिपोर्ट।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि पोषण अभियान ने भारत में पोषण परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके लाभार्थियों में विशेष रूप से बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण ग्रहण करने की बात पर जोर दिया। श्री मल्होत्रा ने लोगों से पोषण को प्राथमिकता देने और अपने लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में 150 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण करने जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होगी। ये जानकारी आज दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी। उन्होंने बताया कि राजधानी के होलम्बी कला में 11 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसके संचालन का खर्च 325 करोड़ रुपए से अधिक होगा। उन्होंने बताया कि इस पार्क में 106 श्रेणियों में 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे का हर वर्ष प्रसंस्करण किया जाएगा। इस परियोजना से 350 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शालीमार बाग क्षेत्र में सिंदूर का पौधा रोपित कर अपनी मां को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पौधारोपण न सिर्फ हरियाली बढ़ाएगा बल्कि दिल्ली के अगली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव भी रखेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और राजधानी को हरित तथा विकसित दिल्ली बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने बताया कि सरकार ने शहर में इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है।
मुझे खुशी है कि एक पेड़ माँ के नाम जो सेकंड सीरीज शुरू हुई है, इसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से हर एक विभाग, हर हमारा स्कूल, हर संस्थान इस पेड़ के अभियान में जुड़ेगा। दिल्ली के निवासियों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हम सब मिलकर के अपनी माँ के नाम, प्रकृति माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। 70 लाख पेड़ लगाने का हमारा टारगेट है इस सीजन में और ये पेड़ लगा के हम दिल्ली के वातावरण को बेहतर करना चाहेंगे।
इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह से दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में मुलाकात की। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दिल्ली नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाए जा रहे उपागमों का अध्ययन करना, मास्टर प्लान 2041 और भवन उपनियमों के ऊपर चर्चा करना था। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि ये दिल्ली नगर निगम के लिए गर्व का क्षण है कि ठोस कचरा प्रबंधन और लेगेसी कचरे के निस्तारण के हमारे मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक और विशाल शहर है जिसकी जनसंख्या बंगलुरु से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करने आए हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इसमें लाल किला के पास गौरी शंकर मंदिर, साइकिल मार्केट, भागीरथ महल, शीशगंज गुरुद्वारा और फतेहपुरी मस्जिद के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक के ऐतिहासिक वैभव को फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश की पहली नमो भारत रेल का परिचालन जल्द ही मेरठ शहर के अंदर भी शुरू होगा। इस परिचालन के शुरू होने से मेरठ और दिल्ली के बीच लोगों का सफर सुगम और आसान हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम RRTS ने बताया है कि मेरठ शहर के भीतरी इलाकों शताब्दी नगर और बेगमपुल से नमो भारत ट्रेन का परिचालन होने से औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ होगा। RRTS के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच दौड़ रही नमो भारत ट्रेन का मेरठ की तरफ अगला स्टेशन शताब्दी नगर है, जो संचालन के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरठ साउथ से ही मेट्रो भी संचालित होगी। परतापुर और रेठानी मेरठ साउथ से शताब्दी नगर के बीच दो मेट्रो स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर नमो भारत का स्टॉप नहीं होगा और केवल मेट्रो ट्रेन रुकेगी। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने आज नई दिल्ली में विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे 2025 के अवसर पर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL पोर्टल के नए संस्करण का शुभारंभ किया। ये पोर्टल NABL की मान्यता प्रक्रिया से संबंधित जानकारी, दस्तावेजों और सेवाओं तक पहुंचने का एक माध्यम है। इस वर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय है प्रत्यायन, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना। एक रिपोर्ट।
विश्व प्रत्यायन दिवस MSME के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार पहुंच और विश्वसनीयता बढ़ाने में प्रत्यायन की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है। इस अवसर पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्यायन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को बनाए रखने, निर्यात को समर्थन देने और समावेशी तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रमाणन और मूल्यांकन निकाय महत्वपूर्ण हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से देश ने पिछले 11 वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर NDA सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक समावेशी और सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश आज न केवल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। उन्होंने कहा कि भारत आशा, विश्वास और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत के विकास यात्रा को जानने के लिए नमो ऐप पर उपलब्ध वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और आलेखों के जैसे विधाओं के माध्यम से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर सुशासन की राजनीति और जिम्मेदार तथा जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर एक नया मानदंड स्थापित किया है। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में मोदी सरकार ने विकसित भारत की नींव रखी है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं जो विकसित भारत, और विकसित भारत में अमृतकाल, और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग समावेश विषय पर 3 दिवसीय विशेष अयंगर योग कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यशाला आज से बुधवार तक दोपहर तक चलेगी।
लाइफ योगा सेंटर के प्रसिद्ध अयंगर योग शिक्षक अमित शर्मा के नेतृत्व में अयंगर परंपरा की पहचान के अनुरूप सत्र शरीर मुद्रा और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कार्यशाला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से जुड़े विद्वानों और योग उत्साही लोगों के लिए खुली है। इच्छुक प्रतिभागी dr.rshaarma@aia.gov.in पर डॉक्टर रामावतार शर्मा को ईमेल करके पंजीकरण करा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मंजुषा राजगोपाला ने जोर देकर कहा कि योग समावेश संस्थान योग को सभी के लिए सुलभ और उपचारात्मक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रमाणिक और समावेशी योग के माध्यम से समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को शहर के वजीरपुर और न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उत्तर पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया है कि उत्तर पश्चिम जिले के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन अवैध नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी के मदनगीर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से उच्च गुणवत्ता का लगभग 3.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर नारायणन एसएल ने आज चौथे दौर में वियतनाम के ग्रैंडमास्टर गुएन डुक हुआ पर जीत हासिल की। वे भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
ग्रैंड मास्टर दीप्तायन घोष और 2 अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन को मजबूत करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इंटरनेशनल मास्टर्स दिनेश शर्मा और हर्ष सुरेश ने शीर्ष समूह में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जबकि ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत ने प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एक और जीत हासिल करते हुए अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में ग्रैंड मास्टर मैनुअल पेट्रोसियन, मिहेल निकेतेंको, मेमिकोन घारबियान, बोरिस सावचेंको और लुका चादजे ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
राजधानी दिल्ली में आज लोगों को तेज धूप के साथ लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार कल दिन में तेज धूप के साथ लू चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पोषण अभियान के अंतर्गत राजधानी के कृष्णानगर में पोषण किट वितरित किए। दिल्ली सरकार राजधानी में 150 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण करेगी। पार्क में हर वर्ष 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे का प्रसंस्करण होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा, नमो भारत रेल का परिचालन शताब्दी नगर और बेगमपुल सहित मेरठ के कई भीतरी क्षेत्रों में भी शुरू होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने विश्व प्रत्यायन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड पोर्टल के नए संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।